आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिए की पहल। एडवाइजरी जारी कर मुख्य सचिवों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है सरकार। नौकरी और रोजगार के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं संभावनाएं। प्रदेश के चयनित कुशल निर्माण श्रमिकों को इसराइल में 2 वर्षों के लिए मिल सकेगा रोजगार। और कानपुर की एक फैक्ट्री में आग लगने से 6 श्रमिकों की मौत, 1 घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में दिशा निर्देश और मैनुअल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
केंद्र सरकार द्वारा जारी परामर्श में तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों को रेखांकित किया गया है। इसमें विशेष रूप से नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस परामर्श में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के निष्कर्षों के हवाले से विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसका लक्ष्य तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ियों की रक्षा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सैमसंग इनोवेशन कैंप्स द्वारा आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ITM के बीटेक के करीब 600 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए निवेश की संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार उद्योग लगाने के साथ रोजगार की भी गारंटी दे रही है।
आज हमारे पास 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं हर एक सेक्टर की, और हर पॉलिसी को हमने इम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा है। अपनी जो औद्योगिक विकास की पॉलिसी बनाई तो उसमें हमने औद्योगिक एवं रोजगार की पॉलिसी नाम उसको दिया। हमने कहा औद्योगिक निवेश होगा, सरकार इंसेंटिव देगी, लेकिन इंसेंटिव के साथ साथ उन्हें रोजगार देने की गारंटी भी हमें देना होगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 55वीं और महंत अवैद्यनाथ की 10वीं पुण्यतिथि के तहत साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। समारोह के आखिरी दिन ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ को पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय विभेद, छुआछूत और अस्पृश्यता के चलते जब तक सामाजिक एकजुटता का अभाव रहेगा तब तक राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलती रहेगी। यही कारण है कि भारत की मार्गदर्शक संत परंपरा ने समाज को जोड़ने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के सिविल लाइन्स क्षेत्र में निर्माणाधीन गौरव संग्रहालय का कल शाम निरीक्षण भी किया। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी जिले के चिकित्सा विज्ञान संस्थान IEMS VHU के आयुर्वेद संकाय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में कल हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने तिरुपति बालाजी के प्रसादम के मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि मिलावटपन को हिन्दू शास्त्रों में पाप कहा गया है। सरकार ने 100 दिन की पहल के अंतर्गत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM ने अपने प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लेन देन शुल्क में कटौती की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि GEM प्लेटफॉर्म पर लेन देन शुल्क लगभग 33% कम कर दिया गया है, जिससे विक्रेताओं को लाभ होगा और वे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। जेम ने पोर्टल के लिए नई राजस्व नीति की घोषणा की है, जो इस वर्ष 9 अगस्त से प्रभावी हो गई है। जीईएम के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत चौहान ने कहा कि बाकी लेन देन पर नाममात्र 0.30% शुल्क लगेगा, जो अधिकतम 3 लाख रूपये होगा।
जन सहायक जो हम अभी लगभग हमारा प्रोग्राम तैयार है, अभी हम उसको लॉन्च कर रहे हैं आरएफपी के द्वारा, सारी इंडस्ट्री में सारे देश भर में किसी को भी, चाहे बायर हो या सेलर हो, उसको जो भी सर्विसेज चाहिए होगी उसमें उनको हैंड फैसिलिटेट करेंगे। आने वाले 18 महीने में हम लोग 5,000 के करीब लोगों को एम्पैनल करेंगे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोक सरकार के 100 दिन पूरा होने पर काफी खुश हैं। काशी के जीआई विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि श्री मोदी ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में जो एजेंडे तय किए थे उसे समय रहते पूरा कर लिया।
100 दिन के एजेंडे में किसान है, शिल्पी है, बुनकर है, महिलाएं हैं और यहां तक कि आदिवासी समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्ग के, दिव्यांगजन है, तो उनके लिए जितनी भी योजनाओं को उन्होंने अपने रोडमैप में डाला था, उन रोडमैप को उन्होंने 100 दिन के अंदर में पूरा किया। दूसरी एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो वृद्धजन थे, 70 वर्ष की आयु के ऊपर के लोग, सबसे अधिक मेडिकल की आवश्यकता उनको होती है, वो जो उन्होंने घोषणा किया था कि हम 100 दिन के अंदर उसको पूरा करेंगे, उन्होंने उसको पूरा किया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमेरिका में सिखों के बारे में दिए गए बयान को लेकर कल लखनऊ और मिर्जापुर सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच एक दिन पहले वाराणसी में अधिवक्ता और भाजपा पदाधिकारी अशोक कुमार की तहरीर पर राहुल गांधी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लखनऊ के एसडीपीजीआई में कल क्षय रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषण पोटली प्रदान की गई। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश के चयनित कुशल निर्माण श्रमिकों को 1,37,500 रूपये के वेतनमान पर 2 वर्षो के लिए इसराइल में रोजगार मिलेगा। इससे संबंधित सभी विवरण सेवायोजन विभाग के पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर उपलब्ध है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि इसराइल के साथ इस संबंध में हुआ समझौता कुशल निर्माण श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी योग्यता साबित करने का सुनहरा मौका देगा। वाराणसी जिले में 15 नवम्बर को देव दीपावली पर इस साल 12 लाख दीप जलाये जायेंगे। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक राजेंद्र कुमार रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार की पहल पर जन सहभागिता से काशी के 84 से अधिक घाटों पर दीये जलाए जाएंगे। इनमें 3 लाख दीये गाय के गोबर से बने होंगे। कानपुर देहात के रनियागंज थाना क्षेत्र में कल एक फैक्ट्री में आग लगने से 6 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल श्रमिक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं औरैया जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर इटवा कटरा थाना क्षेत्र के हरनागरपुर गांव के पास कल दोपहर एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े डंपर से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार चालक समेत कार में सवार 2 महिलाओं व 1 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदेश के 24 जिलों की 49 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित बस्ती, प्रयागराज, उन्नाव, हरदोई और फर्रुखाबाद में कल जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। सिंचाई विभाग के अनुसार गंगा नदी बदायूं जिले के कछला ब्रिज पर, बलिया जिले में फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में, कन्नौज के गुमटिया और कानपुर नगर के अंकित घाट पर खतरे के निशान से ऊपर है। घाघरा नदी बलिया के तुर्ती पार में और रामगंगा नदी शाहजहांपुर जिले के डाबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त करने के लिए की पहल। एडवाइजरी जारी कर मुख्य सचिवों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है सरकार। नौकरी और रोजगार के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं संभावनाएं। प्रदेश के चयनित कुशल निर्माण श्रमिकों को इसराइल में 2 वर्षो के लिए मिल सकेगा रोजगार। और कानपुर की एक फैक्ट्री में आग लगने से 6 श्रमिकों की मौत, 1 घायल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।